मुझे पता है, पहली बार प्रभुपाद बता रहे हैं। जो कोई भी इस भारतवर्ष में जन्म लेता है सब वो भक्त है, पर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ के लोगों ने वो शुद्ध भक्ति होना चाहिए, और शुद्ध भक्त शुद्ध भावना है कृष्ण भावना। जब वो शुद्ध भक्त हो जाएंगे, आपका मनुष्य जन्म ये सर्व सिद्ध होता है, और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, और यही जीवन का लक्ष्य है। ये पहली चीज है जो मुझे इस संस्था की ओर आकर्षित की गई। मैं जो हूँ मैं मध्वाचार्य के जन्म स्थान उड़पी से हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं ये नहीं जानता था और क्या मध्वाचार्य की महानता है। हमारे स्कूल के हाईस्कूल के दौरान हमारे विषय थे कि मध्वाचार्य क्या है, रामाचार्य रामानुजाचार्य क्या है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम जान पाए कि कौन है मध्वाचार्य, कौन है कृष्ण जो परम पुरुष भगवान है। मैं मेरा जन्म और मेरा बालपन उड़पी में गया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि कृष्ण ये सर्व परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रभुपाद ने अनेक ऐसे गिफ्ट दिए हैं, उपहार दिए हैं, बहुत से वक्ताओं ने बताया, जैसे कि आदिकेशव प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद के तरफ जो आकर्षण है। एक बार मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो मैं याद करना चाहता हूँ। गुरु से आज्ञा लेना और उसे पूरी परिपूर्ण करना, उसे बहुत समय लगता है, उसे योग्यता लगती है और उसे समय लगता है। श्रील प्रभुपाद को 1922 में ये आज्ञा मिली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि आप इस संदेश को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पाश्चात्य देश ले जाइए, और इसे अंग्रेजी भाषाओं में प्रसारित कीजिए, और इस आदेश को परिपूर्ण करने के लिए उनके 40-42 साल लग गए। और ये प्रभुपाद की नम्रता से उन्हें 40-42 साल लगे। उनकी जो श्रद्धा है, जो दृढ़ता है, वही इस संस्था की उपलब्धि, वही उस यश है। जब प्रभुपाद यहाँ से गए उनके पास कुछ नहीं था, न कोई, किसी प्रकार के फॉलोअर, किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उनके पास श्रद्धा थी भगवान के नामों में। और ये श्रद्धा थी कि ये जो कृष्ण भावना है वह सबकी भावनाओं को उद्धार करेगा। किसी बगीचे में जाकर भगवान ने, प्रभुपाद ने किसी मृदंग और करताल की सहायता के द्वारा, वो केवल हरे कृष्णा जप कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, घंटों इस कीर्तन, इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया। और प्रभुपाद बोल रहे थे कि पहला लड़का अच्युतानंद आया और उसने नृत्य किया, और प्रभुपाद ने किया और प्रभुपाद को काफी यश प्राप्त हुआ। और इसमें कोई फर्क नहीं है। इन भारतवर्ष में भी हमने देखा कई संस्था है, महाराष्ट्र संघ, पंजाब संघ, कर्नाटक संघ, बहुत संघ है, और वो केवल किसी मर्यादा में उपलब्धि है। लेकिन सारे जगत में कोई मर्यादा नहीं है, ऐसे कृष्ण भावनामृत संघ है। हर जीवात्मा यहाँ पर आकर इसका उपयोग कर सकता है और जप कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और जो प्रभुपाद की कृपा है, जो दया है कि उन्होंने अपने बुढ़ापे में जाकर कृष्ण भावना का प्रचार किया, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में थे, बावरी जैसे झोपड़ी झोपड़पट्टी में, प्रभुपाद वहां पर जाकर हजारों हिपियों के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। हरे राम 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 हरे हरे। लाखों संख्या से लोग यहाँ पर आते थे और कृष्ण भावना द्वारा वह उपयोग उनका जीवन यश प्राप्त करते थे। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम ये कोई बॉम्बे या किसी कलकत्ता शहर से नहीं है, वह गोलोक धाम से है। हम जब जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तब राधा कृष्ण अपने आप अवतरित हो जाएंगे और हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारा जो चेतना है वो भी शुद्ध हो जाएगी। प्रभुपाद कहते थे कि हम सब शुद्ध भक्त रहने चाहिए और हमारी जो चेतना है वो शुद्ध रहनी चाहिए। एक बार इस ग्रेस रविंद्र स्वरूप बता रहे थे, उनकी श्रद्धांजलि में बता रहे थे। एक बार न्यूयॉर्क में एक रिपोर्टर, एक समाचार पत्र का संपादक आया था और उनके सामने एक माइक्रोफोन रखकर बता रहे थे प्रभुपाद को। उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी कल्ट में, आपके संग में और बुद्धिस्ट संग में क्या फर्क है। प्रभुपाद ने कहा हमें किसी से संबंध नहीं है बुद्धिज्म या हिंदुज्म। हम बता रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं कि सर्वोच्च सत्य ये भगवद गीता है। अगर आप सत्य को अपनाते हैं तो भगवद गीता आपको आकर्षित करेगी। और ये कहकर प्रभुपाद चल दिए। ये प्रभुपाद की बुद्धिमत्ता थी, ये प्रभुपाद का श्रद्धा था और वह प्रत्यक्ष जीवन में हम अपना सकते हैं। और प्रभुपाद वहां पर गए और उनको वहां पर श्रद्धा दिया और वो पाश्चात्य देश है, वो लोग आकर हमें बता रहे हैं कि क्या हमारी सभ्यता है। हमारा जीवन आयुष्य बड़ा छोटा है हमने ये कृष्ण भावनामृत पाश्चात्य हुआ और पाश्चात्य देश हमारे यहाँ पर आ गए। एक बार एक व्यक्ति हमें पूछ रहे थे, जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज पाश्चात्य देश से आ रहे थे, अमेरिका से आ रहे थे, हम सब एयरपोर्ट पर खड़े थे। हमारे एक भक्त अंदर गए महाराज का सामान लेने के लिए। वो व्यक्ति क्रिश्चियन था। वो जो व्यक्ति क्रिश्चियन पूछ रहे थे कि कौन व्यक्ति जो आ रहा है, तो हमने कहा कि ये हमारे गुरु महाराज है, वो भगवान कृष्ण का भक्त। और कौन सा कृष्ण? वो भारतीय कृष्ण आप जो पूछ रहे हैं। और कैसे ये कैसे समझ आया कि अमेरिकी लोगों ने कृष्ण को अपनाया? प्रभुपाद ने इस दीवार को तोड़ दिया। कृष्ण जो है वो सारे जीवात्माओं के लिए भगवान है, परम सत्य है। और हम यह भी देखते हैं बहुत हमेशा अलग अलग प्रभात को किसी ने कहा कि आपके जो व्यक्ति आपके भक्तों का जो संस्कृत का उच्चारण है वो सही है। प्रभात ने कहा सही है, उनका उनके उच्चारण तो सही नहीं है लेकिन उनकी जो संसार के प्रति भक्ति है वो सही है, वो परिपूर्ण है। जब हम देखते हैं कि यात्रा में हमें लोगों को रोकना पड़ता है, 3 महीने पहले उसका बुकिंग करना पड़ता है और इतना रोकने के बाद भी 5,000 लोगों की यहाँ पर उपलब्धि है। प्रभुपाद की जो यश है, जो अचंभा है, वो बहुत है। जब हम जप कर रहे हैं, जब हम क्षण को बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। सब लोग कार्य कर रहे हैं,
हाउ टू लिव,
कैसे इस जगत में सुख से जिया जाए। सब लोग सोच रहे हैं कि और सुखी जीने का मार्ग जो है, यहाँ पर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रभुपाद ने हमें इस जगत में कैसे सुखी रहना है और इस जगत को कैसे छोड़ना है ये हमें सिखाया है। इस अवसर पर मैं उपास से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी प्रकार से मैं सेवा कर सकूं और आपके इस संस्था में सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। हम बड़े खुश हैं कि अभी गोविंद प्रभु ने सुबह श्रद्धांजलि अर्पण नहीं की थी, अभी गोविंद प्रभु श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे और उसके बाद राधिका वल्लभ प्रभु अर्पण। हरे कृष्णा। हमें एक कन्वर्सेशन पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद का, एक बातचीत पढ़ रहा था, वो वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे ये जो विज्ञान है वो कुकिंग करने जैसे है। कुकिंग क्या होता है कि वो इंग्रेडिएंट्स वो अलग अलग सामग्री जमा करते हैं और उसका पदार्थ बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों को उसका क्या कल हमारे भक्त गौरांग प्रभु, राधा वल्लभ प्रभु, दामोदर प्रभु, उन्होंने एक किताब निकाला है जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन वह यात्रा में और हमारे मंदिर में जो व्यंजन बनाते हैं उनका एक किताब निकाला है। और ये तीनों जो व्यक्ति है ये जब ये सारे वैज्ञानिक बैकग्राउंड के हैं, वैज्ञानिक को IIT से है, प्रभुपाद ने सारे बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर लाया और यहाँ पर उन्होंने उनको एक अच्छा सा कुक बनाया। महाप्रभु का ये जो मिशन है, ये संस्था है, कोई पात्र अपात्र नहीं देखा उन्होंने। जब हम देखते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने एक बार हमारा पूर्व प्रधानमंत्री इस टेंपल एक मंदिर में गया, दक्षिण भारत में गया, बड़ा एक मंदिर देखकर और बड़ा फीस देखकर बड़ा ये देखकर कहा कि ये फैक्ट्री होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियों को मंदिर बना दिया। प्रभुपाद ने अद्भुत लोगों को, अगर ये बड़ा आश्चर्यचारिक है, लंदन में लॉर्ड्स फैमिली जो एक बड़ी फैमिली से एक बड़ी घराने से आ रहा था, प्रभुपाद ने कहा कि हमारे एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि जाइए पाश्चात्य देश में, ब्रिटिश इंग्लैंड में जाइए और वहाँ पर पढ़ाई कर वहाँ पर एक नौकर को प्राप्त कीजिए। और प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ और इतने सारे जो लोग हैं वो मेरी सेवा कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार श्री प्रभुपाद की श्रद्धांजलि के दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी ने एक बात बताई। प्रभुपाद का ये एक मजाक है कि उन्होंने मुझे एक नेता बोल के बनाया है। प्रभुपाद किसी को भी और कहां से भी उठा सकते हैं अगर वो कृष्ण भावना को लेना चाहते हैं और श्रद्धा से कुछ सेवा करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि श्रील प्रभुपाद, मैं कम से कम अयोग्य हूं लेकिन ये प्रभुपाद आपकी कृपा है और मेरे गुरु महाराज की कृपा है और मुझे सेवा में सेवा दी गई है और मैं ये करता रहूँ मेरे पूरे जीवन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम हमारे श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अभी हम श्रद्धांजलि की जाएगी। अभी हम श्रुति कीर्ति प्रभु को हम बुलाते हैं। श्रुति कीर्ति प्रभु ने सेवा की है, उनके स्वयं सेवक हरिशौरी प्रभु के अलावा उन्होंने सबसे दूर बहुत से श्रुति कीर्ति प्रभु की किताब में एक लेख आता है कि श्रुति कीर्ति प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आइए और श्री प्रभुपाद को श्रद्धांजलि अर्पण कीजिए। हरे कृष्णा। किसी के पास मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर इस संध्या को उपस्थित रहने के लिए। मैं 2001 में पहली बार एक भक्तों के समूह को संबोधित किया था रावल में। उन्होंने मुझे एक सेवा प्रदान की थी वो 10 साल पहले। पिछले 6 महीनों से मैं इस गोवर्धन में रह रहा हूँ और मेरे में बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर मैं 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने कभी गोवर्धन की परिक्रमा नहीं किया इस 6 महीने के दौरान, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मैं और सचिनंदन स्वामी महाराज, बीबी गोविंद महाराज, माधव प्रभु, हमने समय दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और वह सुबह ही समाप्त हो गई राधा कुंड के पास। आप ये नहीं समझते कि ये गोवर्धन की कृपा है। वो पिछले 6 महीने से मुझे देख रहे थे और उन्होंने मुझे ढकेला एक परिक्रमा करने के लिए, तो इसलिए मेरे गुरु भाई मुझे खींच ले गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए और ये बड़ा ही अद्भुत ऐसा। प्रभुपाद की एक इच्छा थी, कि उनके आखिरी समय में कि उन्हें गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए और वो उनके शिष्यों के लिए बड़ी ही तनावपूर्ण ऐसा है और वो कह रहे थे कि मुझे लीजिए गोवर्धन की परिक्रमा की ओर ले जाए। लोकनाथ महाराज को कहा कि आप बैलगाड़ी में एक सारे जगत में आप सारे भारत में आप परिक्रमा करते हैं, तो मुझे भी गोवर्धन परिक्रमा करनी है। हम कल जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए 5:30 बजे राधा कुंड की ओर से पैदल। इस तरह से मन सोचता है 20-25 किलोमीटर
पिछले 9 दिन से हम
दंडवत परिक्रमा कर रहे थे
गोवर्धन की। आज अरे बहुत तनाव में था मैं सुबह से, मैं हमेशा प्रभुपाद के तिरुभाव दिन के अवसर पर किसी न किसी इस्कॉन मंदिर में था, पर पहली बार मैं ऐसा हूँ बाहर हूँ। आमतौर पर मैं वृंदावन के मंदिर में होता हूँ, कृष्ण बलराम मंदिर में होता हूँ, पर अभी मैं इतना थका हुआ हूँ दंडवत परिक्रमा करने से, पर मैं जा नहीं पाया। अभी गोवर्धन की कृपा से मैं आपके सबके बीच में हूँ। यहाँ पे सुंदर मंदिर का स्टेज के ऊपर है यहाँ पर, और मेरे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की कुछ सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं कुछ अपने साथ लेके आया हूँ, 2001 से मेरे साथ था ये। 10 साल से मेरे पास था, किसी ताला चाबी में बंद था, किसी कमरे में बंद था और मैंने खोला नहीं था। आज मैं उसको लेके आया हूँ, तो उसको प्रभुपाद के पास में रख सकते हैं, उनको आरती जब करेंगे हम। क्या है ये? आपने किताब पढ़ी होगी मेरी, व्हाट इज डिफिकल्टी। ये किताब है, ये प्रभुपाद की चादर है। ये कुछ साधारण चीज नहीं, प्रभुपाद ने स्वयं बोला मुझको कि जो गुरु की जो वस्तुएं हैं तो आप वो जिंदा है तब वो इस धराधाम पर है, तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके जाने के बाद उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं आपको वो कथा फिर से बताऊंगा इस चादर के बारे में। आपने जो मेरी किताब पढ़ी और तो उनको फिर से सुनना पड़ेगा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आज उसको फिर से बोलना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ प्रभुपाद ने चादर कैसे दी मुझे 1975 साल में। और प्रभुपाद के साथ वो फोटो है मेरे पास। प्रभुपाद को चादर कहाँ से मिली, प्रभुपाद को चादर कहाँ से मिली पता नहीं, पर 5 साल के लिए उन्होंने 1972 में ये चादर उनको मिली थी और 1977 तक वो चादर वही का इस्तेमाल वो कर रहे थे। तो ये प्रभुपाद की चादर है 5 साल की, ये मायापुर में, मायापुर से थी 1975। प्रभुपाद का मैं सेवक था 1972 में। दो ढाई साल हो गए थे प्रभुपाद का सेवा करके मुझको। तो मैं ये सारी चीजें सबको दे रहा था, सब कुछ उस समय इतनी सारी चीजें मुझको मिलती थी, पर वो मैं सबको बांटता रहता था, पर मैं मेरे पास रखने की चीज, पर मैंने कभी भविष्य देखा, भविष्य की तरफ देखा ही नहीं कि ये सारी चीजें जो प्रभुपाद ने मुझको दी थी उनको मेरे पास रखना चाहिए था, पर वो मैंने रखी नहीं। गुरु कृपा प्रभु जो थे उनको चादर प्राप्त करने की इच्छा थी, तो मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि वो मुझे भी होनी चाहिए। तो मेरी भी इच्छा हुई। गुरुपुर में बहुत सुंदर चादर उनके लिए लेके आए। हिमालय की जो बकरी होती है उसके बाल की वो चादर थी, ये बहुत 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 महंगी और मुलायम और ऐसी चादर थी गर्म। ये मायापुर की बात है, लोटस बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग नहीं थी उधर, लोटस बिल्डिंग ही थी। तो हम प्रभुपाद के कमरे में आए, ये जो चादर थी एक रिंग में से उस चादर को निकाल सकते थे एक अंगूठी से, इतना अच्छा चादर था, एक अंगूठी से निकल जाती थी पूरी, और बहुत गर्म थी वो चादर, हाथ से बनाई हुई थी। उनकी इच्छा थी कि ये चादर उनको काश्मीरी संतुष्ट चादर उनको मिल जाएगी, वो ये चादर उनको देंगे और वो उनसे ले लेंगे। कमरे में आए, दंडवत किया, मैं कमरे में था। प्रभुपाद आपके लिए कुछ चादर लेके आए, लोग प्रभुपाद को आके हजारों डॉलर लाके देते थे मायापुर का बिल्डिंग बनाने के लिए। उन्होंने प्रभुपाद के सामने वो चादर, नई चादर दिखाई, उनको हमेशा पता था कैसे हमको नम्र रखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने देखा उसकी तरफ, प्रभुपाद के पीछे उनके अलमारी थी, उसके ऊपर चादर थी पुरानी, अपने पीछे उन्होंने रखी हुई थी वो चादर को। प्रभुपाद ने नई चादर जो बहुत महंगी चादर थी उसको उठाया और लिया, अभी वो हजारों चादर होगी। और उन्होंने बोला बहुत अच्छा, मैं ऐसी चादर मुझको हर साल मिलती थी। प्रभुपाद ने कहा मेरे पिताजी मुझको देते थे। प्रभुपाद के पिताजी जो थे वो कपड़े के व्यापारी थे। उनके मेरे पिताजी ऐसी चादरों के ऊपर काम किया करते थे, ऐसे ही। तो उन्होंने चादर लिया और उसको ऐसे, इतनी महंगी चादर को ऐसे फेंका जैसे मानो 1 रुपए की चादर हो, थैंक यू बोल के। गुरु कृपा प्रभु जी थे वो हाथ सामने कर रहे थे कि वो पुरानी चादर मुझको दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो प्रभुपाद ने ऐसा कुछ किया कि उनको लगा अरे इतनी महंगी चादर थी मैंने लाया थी प्रभुपाद के लिए, मेरे को लगा अपनी पुरानी चादर प्रभुपाद अपना महा चादर मुझे देंगे, पर वो चादर तो मिली नहीं। तो ये जब देखा मैंने तो मुझे लगा अरे मैंने क्यों, मुझे चादर चाहिए ये प्रभुपाद की, क्योंकि उनको नहीं मिली तो मुझको लगा मुझको मिलनी चाहिए। तो मेरे पास प्लान था कि चादर कहाँ से लेंगे, तो मैं प्रभुपाद के साथ ही था, तो मैंने सोचा ठीक है सही समय आएगा तब मैं वो चादर लूंगा प्रभुपाद से पुरानी। तो मुझे कुछ महीनों के लिए इंतजार करना पड़ा, आपको सही समय पर सही स्थान पर कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद वृंदावन में आए, वृंदावन में ये होने वाला था। चादर कहाँ मिलेगी आपको, वृंदावन में मिलेगी चादर। तो वृंदावन में आए हम लोग, बहुत सारी माताएं थी, बहुत सारी माताएं थी जो मुझे बहुत मदद करती थी। प्रभुपाद के कपड़े धोने में मुश्किल था, हर कोई आता था बोल रहा था प्रभु, भारत में ऐसा नहीं था, हर क्योंकि जो विदेशी भक्त आते थे वो हमेशा देखते रहते मेरे कपड़े कैसे दूंगा, मेरा तबीयत कैसे बचाऊंगा, मलेरिया से कैसे बचूं, क्योंकि उनको इतना तकलीफ होता था यहाँ पे। और प्रभुपाद के कपड़े धोने के लिए भी बहुत मुश्किल था। भाई शक्ति माता जी, मालती माता जी, वो हमेशा मुझे मदद करने को तैयार रहते थे प्रभुपाद की सेवा में। तो पालिका माता जी को मैंने बोला मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मार्केट जाओ, एक ग्रे कलर का वुलन चादर लेके आओ, उन्हें कुछ ज्यादा महंगा नहीं था वो। मेरी इच्छा थी कि एक चादर खरीद के ऐसी चादर के जैसे प्रभुपाद को देने का, और प्रभुपाद की पुरानी चादर मैं लूंगा। तो गए मार्केट में, गई माता जी और एक चादर लेके आई, उसमें कुछ दाग नहीं थे, कुछ नहीं थे, एकदम नई चादर थी। एक दोपहर को प्रभुपाद अपने कृष्ण बलराम मंदिर में अपने टेबल के ऊपर बैठे थे। कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद की चादर उसके उनके पीछे थी, फोल्ड करके रखी हुई। तो मैं अंदर गया, तो मैं हमेशा ऐसे घुसने जाता था, तो बेल बजा है तब मैं अंदर जाता था और पूछने के लिए आपको क्या चाहिए। लंच के बाद मैंने अपने दंडवत किया और मैंने चादर अपनी नई चादर अपने हाथ में रखी हुई थी। मैंने बैठ खड़ा हुआ और वो मेरी तरफ देख रहे थे, यस क्या चाहिए आपको। और मैं 24 साल का बच्चा था प्रभुपाद, और वो ठंडा समय था वृंदावन, जैसे अभी जो ठंडा हो रहा है। मैंने प्रभुपाद को बोला कि मैंने ये चादर अपने लिए लाई थी। प्रभुपाद को सब पता था आप क्या बोलने वाले हैं, तो प्रभुपाद हमेशा ऐसे नजरों से देखते थे। हमेशा मैं 10-20 बार अपने मन में सोचता था क्या बोलना चाहिए क्या बोलना नहीं चाहिए, और उस और प्रभुपाद क्या बोलेंगे उसके बाद मैं क्या उत्तर दूंगा, ये सब सोच के चलना पड़ता था। आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, वो क्या बोलेंगे उसके बाद। तो बोले हाँ आपको चादर चाहिए, ठंडी है ले लो खरीद लो। मुझे आप मेरे गुरु हैं, आपके पास पुरानी चादर है और मेरे पास नई चादर होगी, ये अच्छा नहीं लगता मुझको ऐसे देख के। मुझे पूरा नई चादर आपको देनी है। नहीं नहीं मेरे पास चादर है पहले से, आपके पास नई चादर आप रखो। तो मैंने प्रभुपाद प्रभुपाद को बोला, तो मैंने बोला प्रभुपाद जी बराबर नहीं है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पुरानी चादर चाहिए, आप नई चादर लीजिए, ये ठंडा है आप रखिए चादर आप। तो ये मेरे पास ऐसे मेरे बहुत सारे उदाहरण हुए थे पहले मेरे साथ। तो मैं वहां बैठा हुआ था, तो मैंने प्रभु जी को बोला हिंदी में, तो मैं बहुत प्रामाणिक तरीके से प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद मुझे आपका चादर चाहिए, मुझे 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 आपका चादर प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए मैं चादर लाई। और प्रभुपाद को कुछ आ सकती नहीं थी अपनी चादर से, तो उन्होंने और उन्होंने क्या किया, जब मैंने सीधा सीधा उनको बोल दिया तो उन्होंने पुरानी चादर मुझको दे दी और नई चादर ले दी। तो मैंने इस तरह की तो हमको प्रामाणिक होना चाहिए भक्ति मार्ग में। प्रभुपाद का 7 बजे का समय तो आर्थिक समय, मैं खत्म करने के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि आपको महाराज ने गोवर्धन में लेके आए हैं, आप कल परिक्रमा करने वाले हो गोवर्धन की, आपको आपको पीछे बाहर निकल के आशीर्वाद करेंगे। गोवर्धन की कृपा से आप सब कुछ खत्म कर सकते हो, आप भी परिक्रमा करने में सफल हो जाओगे। तो आपको ये इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि गोवर्धन की कृपा से ये हो सकता है, घबराइए नहीं। एक 108 पत्थर लेके जो चल रहे हैं उनको 3 साल लगता है इस पर दंडवत परिक्रमा करने को। हमारे हम सबका ये हमारा प्रचार का कार्य है। कभी कभी आपको रुकना पड़ता है और आपको कुछ नम्रता सीखनी चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा मैं कर रहा था, दंडवत परिक्रमा कर पाए हम लोग। मैं अर्जुन में मैं देख रहा था कैसे वो पत्थर दिख रहे थे और सब, गोवर्धन को देख रहा था। फिर उसके बाद में बारिश के मौसम में कि पूरा हरा हरा हो गया था कपड़ा, हरा कपड़े जैसे मानो उसने पहन लियो। तो आपको सारे बदल जो दिखते हैं यहाँ पर, हर मौसम के हिसाब से गोवर्धन का अलग अलग दर्शन होते हैं। पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पे था, तो मैं महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद साहब महाराज को बुलाना चाहते हैं आगे, हमको इतना प्रेम करते हैं कार्तिक के समवास, कार्तिक के दिनों में, कार्तिक के दिनों में वो विशेष भजन के लिए यहाँ पे आते हैं, हरिनाम के लिए आते हैं यहाँ पे और लाभ लेने के लिए। हाँ, परिवर्तन कैसा होगा उसके, इतने इतने सुंदर किताबें उन्होंने लिखी है जो उन्होंने कार्तिक में यहाँ पे आके सब कुछ उनका तपस्या की है, तो हम उनके लिए बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे हमारे यहाँ पे आके यहाँ पे आए हैं वो और हमें अपना संग दिए। तो सचिदानंद महाराज का यहाँ पे नम्र साधक स्वागत करना चाहते हैं। तो सचिदानंद स्वामी महाराज अभी बोलना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण, मैं शुरू करने के पहले मैं राधानाथ स्वामी महाराज को मेरा कृतज्ञता अर्पण करना चाहता हूँ और इस पद यात्रा या परिक्रमा के लिए जो मैनेजर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अभिराम प्रभु को अभी तरफ में देख रहा था कि उनको लग रहा था जैसे दो सर और आ गए इतना बड़ा मैनेजमेंट करने के लिए। मैं श्री प्रभुपाद जी को सबसे पहले और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वृंदावन के लिए, वृंदावन और गिरिराज के लिए हमको आने का मौका दिया, राधा कुंड श्याम कुंड में आने का मौका दिया, हरिनाम दिया हमको प्रभुपाद ने। और मैं अभी कुछ आपके साथ कुछ बोलने की इच्छा कर समक्ष बोलने की इच्छा समक्ष बोलने को प्रभुपाद ने दिए हुए कुछ विशेष ऐसे इंस्ट्रक्शन उनके बारे में बताना चाहूँगा। उनके आज तिरुभाव दिन पर मैं कुछ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। अब तिरुभाव दिवस जो होता है वो शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा कष्ट वाला दिन हो जाता है। एक तरफ से हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे गुरु जो है हमको बहुत कई सालों पहले हमको छोड़ के चले गए हैं। फिर भी एक तरह से गुरु जो है वो हमेशा शिष्य के साथ रहते हैं। एक प्रामाणिक शिष्य जो है गुरु अपने आदेशों के स्वरूप में अपने शिष्य के साथ रहते हैं। तो ये तिरुभाव दिन है कि अविर्भाव दिन है हमारे जीवन में उनके आदेशों के प्रति जो और प्रामाणिक बनकर और उसके प्रति और उसको अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करने से उसको आविर्भाव योगी बना सकते हैं। क्या हमारे गुरु हमको सच में छोड़ के गए हैं? और यहाँ हम उनके साथ फिर भी उनके साथ रह सकते हैं? और नहीं तो उनके आज्ञाओं का पालन कर कर उस हम उनके उनको और भी अपने जीवन में और भी और अच्छे से ढाल सकते हैं। हम मैं आपको आपको नम्र निवेदन करता हूँ कि प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र हम एक शब्द बोलेंगे, वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे कृष्ण सिंधु दीन बंधु वत्पते कोपेश गोपाकांत तथाकांत नमोस्तुते तथाकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते प्रणमामि हरि गदार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द छकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्ण 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 हरे 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 किस प्रकार से है। प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि उनको चाहते थे कि हम ऐसा समझे कि हम उनके उनके पास हमारे लिए कुछ संदेश है और वो संदेश वहाँ के रूप में देखना चाहिए। जब वो भारत से अमेरिका तक का जब उन्होंने सफर तय किया तो वो इस बारे में बोलते हैं कि जैसे वो एक संदेश वाहक है। कुछ समय पहले एक किताब है लाइट इन द डार्कनेस जो मदर टेरेसा के लेटर्स हैं जो उन्होंने जो उन्होंने लिखे थे पत्र लिखे थे जब वो कलकत्ता में वो गरीबों और मरने वाले व्यक्तियों को सेवा कर रही थी। तो वो बोलती है उधर वो पोयम लिखी है कविता लिखी है उन्होंने उधर पे जब वो जो जहाज पर से आई थी युगोस्लाव मैसेडोनिया इस शहर से वो चली थी उस वहां से वो जहाज में निकली थी। भारत आ रही थी वहां से वो वहां लिखती है वो कविता में लिखती है वो बहुत हृदय मुझे पता नहीं कैसे एक छोटी सी मैं क्रिश्चियन क्रिश्चियन स्त्री हूँ, पता नहीं कैसे वो मुझे, पता नहीं वो मुझे कैसे अपनाएंगे, कैसे वो भारत भारत में मैं कैसे रह पाऊंगी मुझे पता नहीं, पर मुझे एक चीज़ पता है जी, भगवान जिन्होंने जो मेरे मुझे यहाँ पे लेके आ रहे हैं भारत में, वो मेरे मेरा ख्याल करेंगे। प्रभुपाद ने भी ऐसे ही कुछ तो लिखा था जलदूत पे भारत से अमेरिका जाते वक्त, पता नहीं भगवान आपने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया है, पर आप मुझे नचा सकते हैं, जैसे मुझे आपको नचाना है आप नचा सकते हैं। मुझे इन लोगों के लिए जो भागवतम का ये लेके आया हूँ मैं संदेश, तो प्रभुपाद संदेश कहाँ के उनके पास एक ऐसे दिव्य संदेश है इस दुनिया को देने के लिए। एक बार जब वो हवाई में थे, उनका उनका इंटरव्यू लिया गया तो होनुलुलु एडवर्टाइजर में उनका ये संदेश इंटरव्यू आया था। क्या उन्होंने क्या बोला, स्वामी बहुत छोटे हैं उनके कद में, पर उनके आज बड़ा संदेश है। जब उनको सुना, प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा, ये बराबर है, मेरे पास बहुत बड़ा संदेश है, विशेष संदेश है मेरे पास लोगों के लिए। उनका उनका जो संदेश है, इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखा है, तो मेरे हृदय को बहुत छू गया ये। जब उन्होंने अपने जब उन्होंने बताया आप कृष्ण के परिवार में आ जाइए, कृष्ण के परिवार में आ जाइए, वृंदावन जो परिवार है, यहाँ कृष्ण के पिता हैं, माता हैं, उसके उनके उनके दोस्त हैं, उनके प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं, उनके उनके उनकी यमुना है, आप उनको आप उसके उनके उस परिवार में आइए। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, उसके बाद आपको इस परिवार में आना नहीं पड़ेगा, इस अनित्य परिवार में आना नहीं पड़ेगा। कृष्ण इतने दयालु है, कृष्ण को इतना परिवार का परिवार में रहना, देखो मैं इन पर मेरे पास कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे पास माता है, मेरे पास पिता है, मेरे दोस्त है, मेरी प्रेमिका है, राधा रानी है, गोपिया है, सब कुछ है। आप भी मेरे परिवार में आ सकते हैं, आइए आइए, ये कृष्ण का मिशन है। ये जो कृष्ण भावनामृत है ऊपर, आपको इस कृष्ण भावनामृत का अगर आप ये प्रभुपाद का एक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं इस संदेश में कैसे कृष्ण के परिवार में आना चाहिए। प्रभुपाद का एक बड़ा संदेश था प्रभुपाद के पास, संदेश इसके पूरी दुनिया, सारे टीवी स्टेशन, न्यूज़पेपर, सारे अपने शिष्यों के सामने, आओ आओ आप आओ कृष्ण के परिवार में आओ। जब आप ये करोगे, जब आप ये करोगे तो फिर कभी इस दुनिया में नहीं आओगे, इस मृत्यु जन्म मृत्यु के परिवार में कभी नहीं आ पाओगे। ये बड़ा संदेश है। एक बार एक बहुत 61 सेकंड एवेन्यू उधर पे बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद का सर ऊपर था, ऊपर ऊंचा सर रख के चलते थे प्रभुपाद, और बहुत सारे भक्तों का दीक्षा का समारोह था। और न्यूयॉर्क के शहरों में ये उनके इनके पीछे ये भक्त थे जो पागलों की तरह नाच रहे थे। प्रभुपाद को आप देख सकते हैं एयरपोर्ट में कहीं भी प्रभुपाद आ रहे हैं, ये नंगे पांव ये जो भक्त थे वो कैसे किस तरह से नाचते थे। प्रभुपाद कभी गुस्सा नहीं कर रहे थे, वो न्यूयॉर्क में ऐसे देख सकते हैं उस वीडियो में, न्यूयॉर्क में चल रहे हैं उनके सारे नंगे पैर वो भक्त है बाकी के पीछे जो नाच रहे थे। प्रभुपाद अपने अपने सेवक को बुलाया प्रभुपाद ने और बोला, 200 भक्तों को दीक्षा दिया उन्होंने और अपने सेवक को बुला के बोला, प्रभुपाद कह रहे कि मैंने गुरु शिष्य परंपरा का और बढ़ा दिया, आज चैतन्य महापुरुष आने वाले वो जो संदेश प्राप्त उनके पास उनका एक संदेश देने का कार्य था। आपको आपको उनका संदेश समझना चाहिए, पता करना चाहिए क्या बोलना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे। प्रभुपाद एक जो संदेश वाहक थे, संदेश वाहक जो होता है, संदेश वाहक ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक संदेश लेके आ रहा है, उसको पता होना चाहिए संदेश कैसे देना भी चाहिए। प्रोफेसर हो सकता है जिसको बहुत सारा ज्ञान है, पर अगर उसको ये नहीं पता हो उस ज्ञान को अपनी समझ से उतार कर दूसरों की समझ तक समझाए कैसे, तो क्या कैसा वो शिक्षक हो सकता है। शिक्षक को पता होना चाहिए कैसे समझाना भी चाहिए। प्रभुपाद एक संदेशवाहक ऐसे संदेशवाहक थे कि वो बराबर तरीके से संदेश देना जानते थे। प्रभुपाद न्यू वृंदावन में थे, प्रभुपाद ने बताया समझाया था कि कृष्ण प्रकाश की तरह है और माया अंधकार की तरह है, जहाँ भी कृष्ण का प्रकाश होता है वहाँ माया का अंधकार नहीं हो सकता होगा। उन्होंने फिर उदाहरण दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे समझ सकते कितने अच्छे टीचर थे प्रभुपाद। अगर आप अपना हाथ ऊपर लाइट प्रकाश की तरफ करोगे, अगर आप अपना हाथ नीचे कर दोगे तो अंधकार में, और हाथ ऊपर करके पकड़ोगे तो प्रकाश में, नीचे पकड़ोगे तो अंधकार में। हम कृष्ण की तरफ मुड़ जाते हैं तो हम प्रकाश की तरफ है। और देखो ये मेरा हाथ देखो, आप प्रकाश की तरफ उसको करो और फिर प्रकाश से दूर उसको ले जाओगे तो अंधकार में। इशादा का पॉइंट था, पर वो पति इतना सुंदर तरीके से समझाया उसको. आपके हमेशा एक चॉइस है, आप जब परिक्रमा में जाओगे कल तब भी आपके पास वो चॉइस है. आप वो कृष्ण की तरफ मुड़ना चाहते हो, कृष्ण की तरफ जाना चाहते हो, आप कृष्ण के बारे में सोचना चाहते हो और प्रकाश में रहते हो, या आप कृष्ण से दूर जाते हो और सोचते हो और माया में चले जाओगे. गोवर्धन परिक्रमा में आप जाओगे, आप कृष्ण के बारे में सोच सकते हो, कृष्ण है गिरिराज के स्वरूप उन्होंने अवतार लिया है भगवान ने, या आप उस भारतीय व्यक्ति के तो भारतीय व्यक्ति के से मिला, क्यों करते हो गोवर्धन परिक्रमा? आप उसको उसके उस हिंदी सिनेमा के एक हिंदी सिनेमा के एक्टर की याद दिला रहे थे, जिसके पैर में लोहे की सलाख थी और वो लोहे की सलाख जो उसके पैर को लगती थी तो उसे खून निकलता था, और वो बोलता था कि जब खून निकलता तो मैं भगवान की याद करता हूँ. तो मैं उनको बोला कि आप माया में हो, पूरी तरह से माया में हो, आप कृष्ण को देख ही नहीं रहे, आप सिनेमा देख रहे, आप माया में हो, कृष्ण यहाँ है आपके सामने गिरिराज के रूप में. कोई बड़ी चीज बिना त्याग के बिना कोई भी बड़ी चीज का प्राप्ति हो रही है. कब आपको समझेगा? मान आदमी था, उसको अच्छा नहीं लगा जब मैंने बोला इस तरह. एक दुर्वा ग्रास उन्होंने दुर्वा ग्रास निकाला, उन्होंने खो तो उसको खून निकल गया उसमें. मैंने उनको बोला आपने जो सिनेमा के बारे में बोला उसे आप माया के लिए तपस्या कर रहे हो, आप कृष्ण की तरफ बढ़ो. अब मेरे भक्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका मनो आपके जो मन है उसको प्रेम से भगवान की तरफ मुड़ो, तब आप प्रकाश में आ जाओ. जब आप कृष्ण से दूर चले जाओगे, अपने मन को दूर लेके जाओगे तो अंधकार में, ये विशेष कर सत्य है. जब आप जप करो, जब जप करते हो आप देख सकते हो, जब आप जप करते हो जब आप भगवान से एक भगवान से आप संबंध के स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित करने के लिए भगवान का गुणगान करने के लिए जब करते हो तो आप भक्ति में होंगे, आप भक्ति के प्रकाश में होंगे. पर आप सिर्फ अगर आप अपने से ओठ से कुछ आवाज निकालते हो बट हृदय आपका शांत हो गया है तो आप माया में. भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए, भगवान से गुणगान करने के लिए भगवान का इसके लिए जप करना चाहिए. विशेषकर जप में सिर्फ अपने ओठा से अपने मुंह से आपको जप नहीं करना है, आपको हृदय से जप करना है. कृतज्ञता के भाव से और भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए आपको जप करना चाहिए. भक्ति और ठाकुर कहते हैं कि अगर आप जप करके कृष्ण का कृष्ण के संबंध स्थापित करने के लिए करके करने की इच्छा से अगर आप जप नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आप अंधकार में ही हो। ऐसी परिक्रमा, ऐसा जप, ऐसी भक्ति कुछ काम के नहीं। साधना मतलब जो भी आप कर रहे हो जो भी साधना का मतलब ऐसा है, अगर आप माया के बारे में सोच रहे हो साधना के बारे में तो माया मिलेगी। आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हो तो आपको साधना का मतलब एक मशीन के जैसे है, उस मशीन को बराबर कार्य के लगाना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली की तरफ और दिल्ली के रास्ते पे और दिल्ली की तरफ उसका स्टीयरिंग मिले तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर पर आप गोविंद कुंड के बराबर अगर आपका उसका है तो गोविंद कुंड पहुंच जाओगे। आप कृष्ण की तरफ उसको ले जाओगे तो कृष्ण पहुंच गए। आप जप कर रहे हो पर जप कर रहे हो और माया के बारे में सोच रहे हो तो माया में चले जाओगे। तो बात कह रहे कि कृष्ण जो है प्रकाश के समान है और माया जो है वो अंधकार के समान है। भावनावृत का प्रचार करने में प्रभुपाद के चार ए थे। चार ए प्रपद चार बीबीटी के जो ये प्रपद कह रहे थे चार ए प्रपद ने बताया। फर्स्ट ए है जो माया के अंधकार में पड़े हुए हैं उनको उठाना। दूसरा भगवान आध्यात्मिक स्तर पर जीवन के उसका उसका शिक्षण लोगों को देना। और दो और स्तर है जो हमको समझना है। भगवान के अरे भगवान के दिव्य लीलाओं को समझना। और चौथा जो स्तर है वो है परम स्तर हमेशा कृष्ण के बारे में किस तरह सोचते रहना। सबसे पहले लोगों को बताना कि कैसे माया के अंधकार से बाहर पड़ना है। आध्यात्मिक स्तर पर किस तरह जिंदा रहना है ये दूसरा संबंध और अभिधेय के बारे में बताना। तीसरी चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में समझना। कृष्ण लीला समझना वो कृष्ण के बारे में क्या कर रहे हैं कृष्ण क्या सोचते हैं। और चौथा है परमहंस स्तर हमेशा भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करना। सबसे अच्छा क्या लगता है प्रभुपाद के सारे संदेशों में ये है प्रभुपाद बहुत सारे शिष्य थे हम एक बार एक मॉर्निंग सुबह एम्स्टरडम शहर में एक पार्क था, वहाँ पे हम लोग प्रभुपाद के पीछे चाह रहे थे। प्रभुपाद वहाँ पे चले तो प्रभुपाद बहुत सारे लोग अपने अपने वहाँ पे सो रहे थे। वहाँ पे एक घोंसला था बेड में, और इस घोंसले में एक छोटा सा पक्षी था। तो एक पक्षी जो था वो सोच रहा था मैं बैठूं या उड़ूं। वो छोटा सा पक्षी था वो नीचे, वो पक्षी नीचे देख रहा था, प्रभुपाद ऊपर देख रहे थे। हम सब वही थे, अभी क्या होगा हम वही देख रहे थे क्या होगा। प्रभुपाद ने कुछ तो हाथ दिखाया। प्रभुपाद कितनी बार बोले कि मेरी किताबें मुझसे भी अच्छी है, मेरी किताबें सबको दीजिए आप। अगर ये किताबें अगर कोई पढ़ेगा तो किसी के भी हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। अब इस प्रभुपाद ने हमको बताया वृंदावन गिरिराज, सब सब गरीब है, इतने पागल है कि गाय को मारते नहीं है। अमेरिका में ऐसी भारत के प्रति भावना नहीं, पर प्रभुपाद ने इसको सब बदल दिया। श्याम सुंदर मालती ऐसे लोग थे जो जिन्होंने प्रभुपाद को मिले भी नहीं थे, और वो प्रभुपाद के लिए संसार से उसको मंदिर बनाना चाहते थे। सिर्फ प्रभुपाद के बारे में सुनकर वो प्रभुपाद के इतना कुछ करना चाहते थे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपने
हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे।
To all of you, it is a Pundarika Swami who is a very young son named Krishna Maharaj.
एक विशेष व्यक्ति से आपका आपको मिलाना चाहता हूँ जो पुंडरीक्षण पुंडरीक गोस्वामी में जीते हो। पुंडरीक गोस्वामी जी है जो महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हैं दुनिया भर, और राधा रमन मंदिर है उनके, गोस्वामी परिवार से है वो प्रचार करते हैं जग भर। किताबें लिख रहे हैं बीबीटी के अफ्रीका का, अफ्रीका में जो बीबीटी का जो ऑफिस खुला है उसके भी महाराज अभी हेड है, वहाँ पे भी सेवा कर रहे हैं। मेरे एक गुरु भाई ने मुझे बताया प्रभुपाद के गुरु भाई ने एक किताब का लिखा था और वो एक प्रभुपाद को भेजा था तो प्रभुपाद को लेके आया प्रभुपाद के सामने उनके प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था तो उनको लिखा उन्होंने लिखा था कि इतने बुढ़ापे में उन्होंने किताब क्यों लिखी उन्होंने लिखा था मेरे गुरु इस पर धराधाम को छोड़ के चले गए और मेरा जीवन वहीं खत्म हो गया था। मैंने फिर बहुत कुछ किया तो मैंने बहुत कुछ सेवाएं की उसके पहले और उसके बाद मैंने ये किताब लिख तो मैंने बोला कि गुरु महाराज जब चले गए तो आपने गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए थी। पापा ने ये नहीं बोला कि मेरे जीवन का सारा इच्छा चला गया है सेवा करने। पापा बोले मेरा इच्छा और बढ़ गया गुरु को सेवा करने का। भक्ति चारु महाराज बोले हैं एक बार वो बोल रहे थे वो उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को बोला मेरी इच्छा थी मेरे को ऐसा लगता है कभी कि मैं न्यूयॉर्क में अगर आपके साथ रहता तो मैं कितना सेवा कर सकता था। जब आप अकेले थे तब मैं आपके साथ रहना चाहिए था। प्रभुपाद बोले मैं कभी अकेला नहीं था मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ थे। प्रभुपाद में दृढ़ता थी वो प्रभुपाद जी को विश्वास था सिर्फ ज्ञान के रूप में था पर प्रभुपाद को भरोसा था कि उनके गुरु हमेशा उनके साथ पर उनको साक्षात्कार था इस बारे में। साक्षात्कार का मतलब है कि आप कुछ कार्य करो उसके ऊपर सिर्फ ज्ञान नहीं। प्रभुपाद को साक्षात्कार था इसलिए उन्होंने अपने प्रभुपाद ने इतना अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा है। पूरे इस उम्र इतने उम्र के बाद भी प्रभुपाद ने अपने गुरु की सेवा की। प्रभुपाद के हृदय जब 1960 में जब के बाद जब प्रभुपाद को प्रभुपाद जी का जब प्रभुपाद जी का दिल का दौरा पड़ा था तो मधुसूदन प्रभु थे कि उन्होंने लिखा था कि आपका हृदय को कि आप आराम कीजिए आराम कीजिए प्रचार मत कीजिए थोड़ी देर के लिए आप अच्छा रहेगा। श्रीपाद ने लिखा कि मेरे बेटे अगर मैं प्रचार नहीं करता था आप किधर रहते थे। प्रभुपाद ने बोला प्रभुपाद बोलते थे एक छोटी लास्ट 1976 में जब प्रभुपाद जब आखिरी बार न्यूयॉर्क में आए थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। प्रभुपाद सब कुछ कर रहे थे उस वक्त सारा कार्य उनके चल रहे थे प्रचार का जब वो देखता था कि वो अपने वो अपने बीड्स उनके पास रखते थे जप माला और हमेशा जप करते रहते थे, जब भी समय मिलता था जप करते रहते थे प्रभुपाद। चारू महाराज ने पहले वो कथा हमको बताई हुई है। प्रभुपाद हमेशा हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहते थे, वो न्यूयॉर्क में जब थे विशेष रूप से जप कर रहे थे, सब कुछ पीछे रखा हुआ था। तो जैसे समय कुछ ज्यादा था, हर चीज चलता था, जब देखता था प्रभुपाद, जब भी समय मिलता था प्रभुपाद तो जब भी समय मिलता था हमेशा जप करते रहते थे प्रभुपाद। बड़ी आतुरता के साथ जप करते थे प्रभुपाद। उस वक्त एक बूढ़ी व्यक्ति फिजी में प्रभुपाद ने प्रचार स्टार्ट किया था। एक वयोवृद्ध भक्त ने उनको पूछा, क्या मेरे मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला, आपकी उम्र हो गई, अभी आपको जब ज्यादा करना चाहिए। प्रभुपाद उस वक्त हमेशा जप कर रहे थे, हरे कृष्ण जप कर रहे थे। बाद में वो बम्बई आए, बम्बई में आखिरी उनका ये था आगमन हुआ। प्रभुपाद के कुछ भी शारीरिक शक्ति बची नहीं थी। पंडाल प्रोग्राम था, एक पंडाल प्रोग्राम प्रभुपाद के लिए रखा गया था क्रॉस मैदान में। चार नियम मतलब प्रभुपाद को उठा के आसन के ऊपर रखना पड़ता था। आप जैसे आपने अभी चावल का बोरी को जैसे रख दिया आसन के ऊपर, वैसा प्रभुपाद में शक्ति ही नहीं थी। पर प्रभुपाद का जो शरीर था उस तरह हो गया था। प्रभुपाद जो बैठे हुए थे आसन पे, वो सबको बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं सब आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ। आप सबका दूसरे स्कंद में प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं। दूसरे स्कंद पर प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद धीरे से उनका सर भी गिर जाता था कभी कभी। प्रभुपाद तत्पर पढ़ रहा था कोई, तो प्रभुपाद बोलते थे आगे पढ़ते रहो। फिर कुछ शब्द बोल देते प्रभुपाद, जैसे जैसे तात्पर्य पढ़ा जा रहा था प्रभुपाद बोल रहे थे। प्रभुपाद एक शेर के जैसे बोलने लग गए, शेर के जैसे गर्जना करने लग गए प्रभुपाद। जवान व्यक्तियों में भी उतनी शक्ति नहीं होती थी, हो सकती थी, उतनी शक्ति से प्रभुपाद बोलने लग गए। अब पूर्व ऐसी शक्ति आ गई प्रभुपाद में। फिर उन्होंने प्रश्न भी पूछे और प्रश्न भी पूछे और प्रश्न का उत्तर भी दिया प्रभुपाद ने। सिर्फ ज्ञान के रूप में नहीं, पर प्रभुपाद ने अपने अपने जीवन में ढाल के दिखाया हमको किस तरह पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। आखिरी समय तक किस तरह प्रभुपाद भगवान की सेवा करनी चाहिए। से बुद्धि चल रही थी प्रभुपाद, क्योंकि शारीरिक स्तर पर तो कुछ भी शक्ति बची नहीं थी। प्रभुपाद सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति बची और कुछ नहीं बचा मेरे अंदर अभी, कि सिर्फ मानिए जैसे सिर्फ ढांचा बचा हो हड्डी का। प्रभुपाद ने मायापुर में एक बार हाथ उठाया और अपने 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 हाथ को देखा, बोला देखो जैसे फ्लैट टायर हो गया है, शरीर एकदम छूट गया है। सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से चल रहे थे प्रभुपाद, क्योंकि शुरुआती शक्ति तो खत्म हो चुका था कब का, और उस स्तर पर भी प्रभुपाद हमेशा प्रचार कर रहे थे, सिर्फ सेवा कर रहे थे भगवान के लिए। वो कह रहे थे कि गुरु महाराज जब चले गए तो आपने उसकी वाणी की सेवा करनी चाहिए थी, और ये प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने स्वयं के जीवन से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी हम धनुर्धर स्वामी महाराज को हम आमंत्रण देना चाहते हैं। आपने किताब देखी किसी को, अगर आपको महाराज ने जपा के ऊपर एक किताब लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी है, अभी भक्ति के ऊपर एक किताब लिखी है उन्होंने। अभी हम धनुर्धर स्वामी महाराज को आमंत्रण देंगे अपने अपने बारे में बोलने के लिए, अपना प्रभुपाद के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने के लिए, मैं नम्र बन गया हूँ, मेरी कोई पात्रता नहीं है यहाँ पे बैठने की, बट वैष्णव की दया है मेरे ऊपर, मुझे कुछ बोलने के लिए बोला गया यहाँ पे। आज जब मैं उठा सुबह, मुझे पता था गोवर्धन में जो होता है, जो सभा होती है प्रभुपाद जी के लिए, मैं वहाँ बाहर 15-20 साल से बोल रहा था, पर मुझे पता नहीं था मैं यहाँ पे भी आके मुझे आमंत्रण मिलेगा। तो मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ, तो मैं कुछ किया, थोड़ा सा सोचा उसके ऊपर। मैं पिछले 24 घंटे मेरे सोच रहा था कि मैंने क्या किया, मैं सोचता देखना चाह रहा था प्रभुपाद की दया मुझे किस तरह मिली पिछले 24 घंटे में, क्या किया मैंने। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्रभुपाद की दया की, क्योंकि प्रभुपाद की सबसे बड़ी जो ख्याति हो सकती है वो कैसे हो सकती है, प्रभुपाद की जो धरोहर है, उनकी धरोहर, उनकी उनका जो उनकी जो शिक्षा है वो आगे चलती जाए। यहाँ देख के मुझको लग रहा है, मुझे यहाँ देख के, मुझे आप सबको एक साथ देख के मुझे लग रहा है कि प्रभुपाद ने क्या किया, कि प्रभुपाद ने जो किया है वो आगे बढ़ रहा है, गुरु परंपरा में आगे जा रहा है। आप लोग इतने सारे संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हो, सचिनानंद महाराज वहाँ बैठे हैं। कल मैंने कल रात को पढ़ा, उनका जर्नल पढ़ा कि दंडवत प्रणाम के बारे पढ़ा, और उनको भी मुझे बहुत जो मुझे दे प्रभुपाद प्रभुपाद के जो वो उस पर बोल रहे थे क्यों वो कर रहे हैं वो दंडवत परिक्रमा नम्रता सीखने के लिए। Okay, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा क्यों 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 साधना करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि भक्ति भगवान के भगवान की दया से भाव मिल सकता है, तो फिर हम लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं, क्यों साधना भक्ति करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया उधर पे, वो बोल रहे थे अगर आप किसी के दरवाजे में घुसना चाहते हो, अगर बार बार आप उस दरवाजे के सामने धूल पड़ी उसमें बार बार अपना सर को डाल रहे हो, झुक रहे हो झुक रहे हो झुक रहे, क्यों आपको व्यक्ति अंदर नहीं आने देगा आप बोले। तो मैं सोच रहा था कितना सुंदर एक दर्शन का क्या अर्थ है, ये मैं समझ रहा था। भगवान हमारे सारे कार्यकलाप की तरफ देख रहे हैं, भगवान कार्यकलाप की तरफ देख रहे हैं, भगवान हमारे हृदय को देख रहे हैं। फिर मैं सोच रहा था क्यों ना क्यों मैं सोचूं प्रभुपाद ने क्या क्या किया, कार्य किए प्रभुपाद ने, कैसे कैसे प्रचार किया। पर मैं सोच रहा था, मैं देखना चाहता था कि भगवान कैसे देख रहे होंगे उसको। फिर मैं मुझे याद आया तो दर्शन के शब्द का अर्थ मैं ढूंढ रहा था कि वो जो यज्ञिक पत्नी ब्राह्मणों की जो पत्नियों थी उनके उद्धार की जो कथा आती है, जो कितने ही कठिनाइयों को पार कर कर भगवान के दर्शन के लिए आए थे, कैसे मिले उनको भक्त। गोपियां जो थी वो फूल बेच रही थी, गोपियां जो फूल बेच रही थी वो भगवान के नाम का सिर्फ जप कर रहे थे, और ये यज्ञ पत्नियां थी उन्होंने भगवान की कथा के बारे में उनसे सुना, गुणगान सुना, और जब वो भगवान के पास आ गई सब कुछ छोड़ के और सब कुछ लेके भगवान को देने के लिए, भगवान ने उनके ऊपर अपनी भगवान ने उनके ऊपर एक छोटा सा स्माइल किया। जब आप गुरु के सामने या कृष्ण के सामने जाए, आप अपना तन मन धन उनकी सेवा में लगाए, जब आप उनके मुख पर एक ऐसी स्मित हास्य लेके आओ, या और आप ऐसे भक्ति भाव से सेवा करो, ये दर्शन का अर्थ है। मैं सोच रहा था कि मैं कृष्ण कैसे सोच रहा हूँ उसके बारे में, सोच रहा था प्रभुपाद की सेवा के बारे में कि कृष्ण कितने सुखी होंगे, कृष्ण कितना अच्छा लग रहा होगा प्रभुपाद की सेवा से। तो मैं एक चीज बोलूंगा आज आप 1976 में एक बार आप याद रखिए कृष्ण किस तरह से आप देख रहे हो। 1976 में अगस्त में रूप गोस्वामी का तिरुभाव दिवस था, आधी रात हो गई थी, हम श्री प्रभुपाद के घर के सामने वहाँ कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद पाश्चात्य देश की तरफ जा रहे थे फिर से वापस। प्रभुपाद का क्या स्थिति थी उस वक्त, प्रभुपाद के कमरे में बैठा था उस समय में, प्रभुपाद के उस समय प्रभुपाद का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, एक शाम को प्रभुपाद एक सुबह से एक बार हरे कृष्ण बोले तो भावानंद ने मुझको आके और उनको आने को बोला, उनको शरीर को उठाने को बोला। मुझे बताएगा प्रभुपाद 6 महीने से प्रभुपाद ने कुछ खाया नहीं था 6 महीने से, तो उनको अनार का जूस देते थे। बहुत बहुत पेनफुल था प्रभुपाद के लिए उस समय, बहुत कठिन था उस समय। प्रभुपाद बाहर आए, उनको उठाया गया, बहुत कम वापस आए। मैं देख वो वापस आते कितने क्या, वो बम्बई से वापस आए थे, वो बाहर पाश्चात्य देश के ट्रेन से मथुरा आए, मथुरा से मथुरा अपने उस घर पे आए, ब्रह्मानंद के हाथ में थे वो। तेरे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को पकड़ के थे प्रभात, अपने हाथ को उन्होंने लगाया जोड़ा, हमारे तरफ देखा और बोले कुलशेखर महाराज के मुझे कुलशेखर महाराज की प्रार्थना से उन्होंने बोला कि मुझे अभी मृत्यु आने दो, जब मेरा मन पूरी तरह से आपके श्री चरणों कमल चरणों के ऊपर आश्रित है, पता नहीं अगर मृत्यु आ गया तो मैं कैसे आपके बारे में सोच पाऊंगा। प्रभुपाद ने प्रार्थना सबके सामने बोली, प्रभुपाद का कार रुका हुआ था, प्रभुपाद का कुछ समझ नहीं था। प्रभुपाद को कार के पीछे सीट में रखा था उस कंडीशन में। प्रभुपाद उस कंडीशन में प्रभुपाद फिर से प्रचार करने के लिए फिर से पाश्चात्य देश गए। प्रभुपाद पर दुखी थे, भगवान की सेवा करना चाहते थे। कृष्ण क्या देख रहे हो, कृष्ण क्या देख रहे होंगे इसमें, कृष्ण को कैसे लग रहा होगा। इन ऐसे दिनों पे तिरुभाव दिवस में प्रभुपाद के हमको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, दर्शन के ऊपर हमको सोचना चाहिए, हमारे स्वयं के जीवन के तरफ भी देखना चाहिए, हमारे हृदय की तरफ देखना चाहिए। गुरु और कृष्ण हमारे तरफ देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुद के बारे में सोच करके, फिर से मैं मेरे जीवन को अर्पण करना चाहता हूँ प्रभुपाद के मिशन के लिए। एक प्रभुपाद का एक स्टोरी बता के मैं खत्म करना चाहता हूँ। प्रभुपाद को उस भक्त के दिखे, प्रभुपाद ने देखकर उन एक स्मित हास्य दिया था, तो मैं इस दर्शन के बारे में। अच्छा, गुरु और कृष्ण आप देख सकते हैं और वो इतने आपसे सुखी हैं, आपकी तपस्या से, आपके समर्पण से, कि आप उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हो। प्रभुपाद जब ऋषिकेश से आए थे एक बार, आप कमरे में आए, वृंदावन में हम लोग सब उनके कमरे में आए, सबके तरफ देखा प्रभुपाद ने, भगवद गीता का एक श्लोक उन्होंने बताया सबको, और किसी को रहना है तो उसको वृंदावन आ जाना चाहिए। यमुना है, रमन रहती है, उन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर प्रणम हो जाती। जैसे आत्मा है अलग अलग स्तर से निकलता है, जन्म कौमार यवन जरा स्थिति से, तो आत्मा आत्मा निकलता है हर अलग अलग स्तरों से जीवन में, वैसे मृत्यु के बाद एक और शरीर प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद ने ये बोला, प्रभुपाद ने बोला और एक एक भक्त के प्रति उनका सारा प्रेम वापस हर आया। उन्होंने मुझे कितनी मदद की, उन्होंने कितनी मदद की, मुझे कितनी मदद की। उन्होंने जयनाथ प्रभु के बारे में बोलने लग गए। उन्होंने $5,000 दिए नेक्टर ऑफ दोष भक्ति रस अमृत सिंधु को प्रिंट करने के लिए। कितना प्रेम से उन्होंने बोला। हाँ बैठा था, मैं सोच रहा था प्रभुपाद जो है प्रभुपाद अपने गुणवत्ता से इतना ऊपर है हमारे गुणवत्ता। प्रभुपाद कौन है, कैसे प्रभुपाद उनके हृदय प्रभु के हृदय में ये भक्त चले। प्रभुपाद का दर्शन लिया उन्होंने, प्रभुपाद ने उनके उनकी शरणागति की तरफ देखा। प्रभुपाद ने उनके प्रभुपाद ने बहुत प्रेम प्रभुपाद के हृदय में था इन भक्त के प्रति। तो इस विशेष दिन पर मैं आपको अपने हृदय में झांक कर देखना चाहिए। आपको दर्शन लेना चाहिए गुरु का। आप कल गोवर्धन परिक्रमा करने जाओगे, एक साधु ने मुझको बताया जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं भक्त आप गिरिराज उनके पीछे पीछे चलते हैं। और वो आपके हृदय की तरफ देखते हैं। आज हम प्रभुपाद का दर्शन ले सकते हैं, हमारे हृदय प्रभुपाद के खोल के दे सकते हैं प्रभुपाद को, तो हमको एक निष्कर्ष मिलेगा। कुछ नहीं हमारे पास प्रभुपाद को देने के लिए, इतना बड़ा गैप है कि हमको क्या प्रभुपाद को देना है और हमारे पास क्या है अभी इस स्तर पर, और हमको कितना दूर जाना है प्रभुपाद पवित्र बनने के लिए प्रभुपाद की सेवा में। अगर हम नम्र हैं और प्रभुपाद के प्रति त्याग और समर्पण के भाव से हम प्रभुपाद के साथ जो भी हमें कमी होगी वो प्रभुपाद हमको पूरा करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। अभी दामोदर अष्टकम होगा, उसके पहले कुछ कल हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे। 6:30 बजे परिक्रमा शुरू होगा।